कुंज बिहारे रथ माधव कुंज बिहारे गोपी जन Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिवदर्शन श्रीष्टमलभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन डिविटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के 24वें अध्याय पर चर्चा होगी, जिसका शीर्षक है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन। इसके श्लोक को पढ़कर फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। कृपया वैसे आप लोग दोहरा नहीं पाएंगे, लंबा लिखा है ना, बड़ा है, इसको केवल पढ़ेंगे। यस्य हवाव क्षित पतन प्रसखल अनादिषु विवशः सक्र नाम भी गृण पुरुषः कर्म बंधन मंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षवो अन्यथैवो पलं लभन्ते। सो इसके शब्दार्थ को पढ़कर फिर अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। कृपया दोहराइए। यस्य जिसका हवाव निसंदेह क्षुत भूखे होने पर पतन गिरना प्रस्खलन आदिषु लड़खड़ाना आदि विवशः असहाय होकर सकृत एक बार नाम अभिग्रणन भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए पुरुषः व्यक्ति कर्म बंधनम कर्मों का बंधन अंजसा पूर्णतया विदुनोति धो देते हैं। यस्य जिसका ह निश्चय ही एव इस प्रकार प्रतिबाधनम विकर्षण मुमुक्षवः मुक्ति के इच्छुक प्राणी अन्यथा एव निश्चय ही उपलभन्ते अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। यदि भूख से व्याकुल होने गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है तो वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभावों से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसी ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तात्पर्य, यह आवश्यक नहीं है कि श्री भगवान की भक्ति करने के पूर्व मनुष्य को अपनी सारी संपत्ति उन्हें अर्पित की जाए और बंधन मुक्त हो लिया जाए। भक्त को किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। बलि महाराज को उनकी सारी संपत्ति इसलिए वापस नहीं मिली कि उन्होंने श्री भगवान को दान दिया था। जो भी समस्त भौतिक कामनाओं एवं प्रयोजनों से मुक्त होकर प्रत्येक सुअवसर को चाहे वे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक भगवान का वरदान समझता है और उसकी भगवत सेवा में कभी बाधा नहीं पहुंचती। मुक्ति तथा भुक्ति तो भक्ति के अनुषांगिक फल मात्र हैं। भक्त को मुक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। श्रील बिल्व मंगल ठाकुर का कथन है कि मुक्ति स्वयं मुकुतांजलि सेवते अस्मान। भगवान के भक्त को मुक्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता क्योंकि मुक्ति सदैव उनकी सेवा के लिए उद्यत रहती है। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत में भगवान नाम जप के प्रभाव की पुष्टि हरिदास ठाकुर द्वारा वर्णित है। केह बल नाम हैते हय पाप क्षय, केह बल नाम हैते जीवे र मोक्ष हय। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का पवित्र नाम लेने से पापमय जीवन के समस्त प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है और कुछ का कहना है कि भगवान नाम जप से भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरिदास कहे नामे रे दुई फल नाए, नामे र फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाए। किंतु हरिदास ठाकुर ने कहा है कि भगवान नाम जप का मनोवांछित फल भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना या पापमय जीवन के फलों से मुक्त होना नहीं है। भगवान नाम के जप का वास्तविक परिणाम सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। अनुषांगिक फल नामेर मुक्ति पाप नाश, ताहर दृष्टांत ऐछे सूर्यर प्रकाश। हरिदास ठाकुर ने कहा है कि पाप कर्मों के फलों से मुक्ति तथा स्वतंत्रता तो भगवान नाम जप के अनुषांगिक फल हैं। यदि कोई शुद्ध भाव से भगवान नाम जप करता है तो उसे श्री भगवान की प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। इस प्रसंग में हरिदास ने नाम शक्ति की तुलना सूर्य प्रकाश से की है। श्लोकेर अर्थ कर पंडितेर गण, सब कहे तुमी कह अर्थ विवरण। उन्होंने समस्त विद्वानों के समक्ष एक श्लोक रखा किंतु उन सबों ने उन्हीं से उस श्लोक का भावार्थ पूछा। हरिदास कहें यैछे सूर्य र उदय, उदय न हैते आरंभे तमे रहय क्षय। हरिदास ने कहा ज्यों ही सूर्य उदय होने लगता है त्यों ही रात्रि का अंधकार सूर्य प्रकाश दिखने के पहले ही भागने लगता है।
चोर प्रेत राक्षस आदि भय हय नाश, उदय हैल धर्म कर्म आदि प्रकाश।
सूर्योदय के पहले ही प्रातःकालीन प्रकाश के भय से रात्रि के समय होने वाले सकल संकल अर्थात चोरों भूतों तथा राक्षसों के उत्पात विनष्ट हो जाते हैं, और जब वास्तव में धूप निकल आती है तो मनुष्य अपने कार्यों में लग जाता है।
ऐच्छिनामुदय आरंभे पाप आदिर्शय, उदय कैले कृष्ण पदे हय प्रेमोदय।
इसी प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप में जप करने से पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध रीति से जप करने पर श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। इसको ध्यान से सुनना चाहिए ना? पवित्र नाम का शुद्ध रूप में जप करने से पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।
मुक्ति तुच्छ फल हय नाम भास हैते, जे मुक्ति भक्त न लय से कृष्ण चाहे दीते।
यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करें भी तो भक्त उसे स्वीकार नहीं करता। मुक्ति तो नामाभास अर्थात पूर्ण प्रकाश दृष्टिगोचर होने के पूर्व ही पवित्र नाम के प्रकाश की झलक से प्राप्त हो सकती है। नामाभास नाम अपराध अर्थात अपराध करते हुए नाम जप करने तथा शुद्ध जप के मध्य की अवस्था है। भगवान के नाम जप की तीन अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में नाम जप करते हुए प्राणी 10 प्रकार के अपराध करता है। दूसरी अवस्था नामाभास है, जिसमें अपराध लगभग बंद हो जाते हैं और प्राणी विशुद्ध जप की दशा की ओर अग्रसर होता है। तृतीय अवस्था में जब प्राणी अपराध मुक्त होकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम तत्क्षण जागृत हो उठता है। यही सिद्धि है।
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो इस अध्याय की चर्चा के पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायी अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कण्ठयोऽस्फुरा।
तो इन अध्यायों में ब्रह्मांड की रचना का वर्णन चल रहा है। कल हमने सुना कैसे अलग अलग ग्रह हैं, सूर्य है, सूर्य के ऊपर कई ग्रह हैं ध्रुव लोक तक, और फिर कैसे ध्रुव लोक केंद्र है और उसके चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, और फिर कैसे ये जो सारे ग्रहों की रचना है एक मछली के रूप में है शिशुमार, और उसके अलग अलग अंगों पर अलग अलग ग्रह स्थित हैं। और अब इनका वर्णन करने के बाद इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी उन ग्रहों का वर्णन करने वाले हैं जो सूर्य से नीचे हैं। तो पहले छह श्लोकों में वो वर्णन करते हैं उन लोकों का जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच भी काफी लोक हैं, तो वो उनका वर्णन करते हैं। उसके बाद सातवें श्लोक से लेकर सत्रहवें श्लोक तक पृथ्वी से नीचे जो अलग अलग लोक हैं जिनको निम्न लोक कहा जाता है, नीचे के लोक कहा जाता है, जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये सात लोक आते हैं। तो फिर उनका वर्णन वो करते हैं, उनमें से प्रारंभ करते हैं अतल और वितल का, और जैसे ही सुतल पर आते हैं सुखदेव गोस्वामी को बलि महाराज का स्मरण हो जाता है, क्योंकि सुतल लोक पर बलि महाराज रहते हैं। तो फिर थोड़ा सा 18वें श्लोक के आगे 27वें श्लोक तक बलि महाराज का गुणगान कर देते हैं। वो थोड़ा बहुत उस लीला का वर्णन करते हैं कि जब वामन देव आए थे, और फिर बलि महाराज का गुणगान किया जाता है, और फिर अंतिम श्लोकों में 28 से लेकर 31वें श्लोक तक अन्य जो लोग हैं तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इनका वर्णन किया गया है। तो ऐसे इस अध्याय में इसका शीर्षक दिया गया है नीचे के निम्न स्वर्गीय लोक। तो इसको बिना स्वर्ग कहा जाता है। जो स्वर्ग है उसे दिव्य स्वर्ग कहते हैं, पृथ्वी पर जो देवताओं के स्थान है उसे भौम स्वर्ग कहते हैं, और पृथ्वी से नीचे जो लोक हैं उनको बिना स्वर्ग कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको हम सुनेंगे, स्वर्ग क्यों कहा जाता है। नीचे के लोकों में तो सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, पृथ्वी से नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, तो फिर जहाँ अंधकार हो, जहाँ पर सर्प दानव आदि रहते हों, उसको स्वर्ग क्यों कहा जाता है, इसका वर्णन आज हम सुनेंगे। तो इसको बिला स्वर्ग कहते हैं। और उसी बलि महाराज का वर्णन करते हुए इस श्लोक को भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान नाम की महिमा को, कि किस प्रकार भगवान का नाम किसी भी तरह कोई ले ले, खेल कूद में ले ले, गिरते हुए ले ले, कैसे भी ले ले, मजाक में ले ले, उसको लाभ होता है। तो ऐसे ये अध्याय है। तो सबसे पहले वर्णन वो प्रारंभ करते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने सूर्य के ऊपर के वर्णन अब कर दिए, अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में लोक है, तो सूर्य से नीचे जो लोक है वो है राहु। कल कोई प्रश्न कर रहे थे कि कैसे ग्रहण होता है, तो राहु का वर्णन किया गया है कि ये राहु 10,000 योजन सूर्य से नीचे राहु का स्थान है, राहु लोक है। ये जो लोक हैं सूर्य, चंद्र और राहु, ये एक से बढ़कर एक है। सूर्य की परिधि, सूर्य का जो विस्तार है वो 10,000 योजन है, चंद्रमा 20,000 योजन और राहु 30,000 योजन। सूर्य से बड़ा चंद्रमा, चंद्रमा से बड़ा राहु। तो ऐसे ये अलग अलग हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये राहु वैसे देवता नहीं है, इसका कैसे लोक हो गया, कैसे देवताओं की श्रेणी में आ गया सूर्य चंद्र इत्यादि। तो वो कहते हैं कि ये लीला है, आगे इसका वर्णन आने वाला है, समुद्र मंथन का जब वर्णन करेंगे तो विस्तार से वर्णन होगा। तो राहु ये भगवान की कृपा से इसको देवताओं का स्थान मिल गया। तो लीला आएगी बाद में कि कैसे भगवान ने चक्र से उसका सर काट दिया, लेकिन फिर भी उसको देवताओं का स्थान दिया, क्योंकि उसने देवताओं की तरह अमृत का पान कर लिया था। लेकिन ये राहु सूर्य और चंद्रमा इन दोनों से द्वेष करता है, और इसीलिए समय समय पर वो उनके ऊपर आक्रमण करता है, उनकी उनकी जो प्रकाश है उसको ढकने का प्रयास करता है, लेकिन ढक नहीं पाता। क्योंकि जब राहु आक्रमण करता है सूर्य और चंद्रमा पर, उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा करता है सूर्य और चंद्रमा की। तो भगवान के सुदर्शन चक्र के प्रभाव को प्रभुपाद लिखते हैं कि जो राहु है एक मुहूर्त तक ज्यादा से ज्यादा सहन कर सकता, उसके आगे वो सहन नहीं कर पाता। अर्थात भगवान के जो सुदर्शन चक्र जब प्रभाव करने लगता है तो उनके प्रभाव से बचने के लिए उसके पास केवल एक मुहूर्त होता है। अगर भाग जाए एक मुहूर्त में तो ठीक है, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। तो एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट का समय। तो चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट तक रह सकता है, क्योंकि उसके आगे राहु की शक्ति नहीं है कि वो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को प्रभावित करे। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसको लोग जब राहु आक्रमण करता है सूर्य पे, चंद्रमा पे, उसकी उसकी प्रभा को ढक देता है, उस समय को लोग सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहते हैं। साधारणतः ये पूर्णिमा के दिवस या अमावस पर होता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो इसको सूर्य और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो क्योंकि राहु का प्रभाव बढ़ जाता है उस समय में, इसीलिए उस समय को शुभ भी नहीं माना जाता, उसको अशुभ माना जाता है समय को, क्योंकि उसने एक दैत्य होते हुए सूर्य और चंद्रमा जैसे देवताओं की प्रभा को ढक दिया है, इसलिए उस समय अशुभ माना जाता है। तो इसको सूर्य या चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये राहु का लोक है, और फिर राहु के 10,000 नीचे सिद्धों का, चानरों का लोक आता है। चारण और सिद्ध वे उस लोक में निवास करते हैं, और फिर उनके 10,000 योजन नीचे जो स्थान है वो यक्षों का, राक्षसों का स्थान है। उनका कोई लोक नहीं है, वो अंतरिक्ष में रहते हैं। अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो स्थान जहाँ हवा नहीं चलती, जिस स्थान तक हवा चलती है वो पृथ्वी का स्थान है, और पृथ्वी का स्थान कहाँ तक है तो फिर वो जो अंतरिक्ष लोक है उससे नीचे केवल 100 योजन नीचे पृथ्वी है। अर्थात हमारी पृथ्वी बहुत निकट है राक्षसों के स्थान से, यक्षों के इत्यादियों के, तो 100 योजन नीचे पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी की सीमा कहाँ तक है या ऊंचाई कहाँ तक है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जहाँ तक एक बड़ा पक्षी उड़ सकता है, गिद्ध इत्यादि जहाँ तक उड़ सकते हैं वो स्थान पृथ्वी का है, उसके आगे अंतरिक्ष प्रारंभ होता है और वो राक्षसों का स्थान है। हम जब ये पढ़ रहे थे तो हमें स्मरण आ रहा था कि जब प्लेन उड़ता है तो जब प्लेन बहुत ऊपर चला जाता है 35,000 फीट की ऊंचाई पर इत्यादि, तो उस समय वहाँ कोई पक्षी नहीं होता, हवा भी नहीं होती है, इसलिए बादल नीचे होते, बादलों के ऊपर चले जाता है तो एकदम बादल बहुत नीचे दिखाई देते हैं, नीचे से ऐसे वो जाते हुए दिखाई देते हैं बादल। तो हमें लग रहा था कि ये सही है, क्योंकि आजकल के जो आधुनिक राक्षस हैं जो उड़ सकते हैं प्लेन के रूप में, वो भी उसी स्थान पर चले जाते हैं, उनका सही स्थान है अंतरिक्ष। तो खैर ये वर्णन करते हुए फिर अब नीचे के लोगों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, हर एक लोक 10,000 योजन बड़ा लंबा और चौड़ा है, और हर लोक के बीच का अंतर 10,000 योजन है, एक योजन 8 मील का होता है, तो 10,000 मतलब 80,000 मील। तो एक लोक से दूसरे लोक का अंतर 80,000 मील का है, और एक लोक, हर एक लोक 80,000 मील लंबा और चौड़ा है, तो ऐसे हर एक लोक, तो 7 लोकों का वो वर्णन करते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक हैं। आपकी चेतना और आपकी आंखों को पृथ्वी पर रखी है, नीचे नहीं चले जाए रसातल में आंखें। तो हम लोग जब ये वर्णन सुन रहे हैं हम पृथ्वी पर ही हैं, अभी नीचे नहीं गए हैं, तो इसीलिए तो अतल और वितल इनका वर्णन करने से पहले इन सारे लोकों का एक साधारण वर्णन वो करते हैं कि इनको बिला स्वर्ग क्यों कहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ऐश्वर्य है, इंद्रिय तृप्ति की बहुत सुविधाएं हैं, क्योंकि राक्षस सब रहते हैं, असुर रहते हैं, दैत्य रहते हैं, तो दैत्यों के लिए बड़ी सुविधा है। और एक बात वो कहते हैं कि क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती, इसीलिए वहां दिन और रात नहीं है, वहां दिन और रात नहीं है, तो समय का प्रभाव नहीं है, इसीलिए भय नहीं है। इस जगत में हमें समय का प्रभाव है इसलिए भयभीत होते हैं ना, मृत्यु आ रही है, आ रही है, आ रही है, समय चला गया, जैसे भागवत में कहा गया है, आयुर हरति वै पुंसा उद्यन अस्तम चयन नसो, जैसे ही सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, आयु को हर लेता है। तो यहाँ भय है, लेकिन ना वहां सूर्य उदय होता है ना अस्त होता, क्योंकि सूर्य की रोशनी पहुंचती ही नहीं है वहां पर, तो इसीलिए कोई भय नहीं है उन लोगों को। तो फिर प्रकाश कहाँ से है, वहां बड़ा ऐश्वर्य है और बहुत सारे सर्प हैं, जिनके 1 फन, 5 फन, 10 फन, 100 फन, 1,000 फन हैं, और उन फनों पर मणियां लगी हुई हैं, और उन मणियों के प्रकाश से ये सारा जो नीचे का लोक है वो प्रकाशमान होता है, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं ना कि मेरे लोक में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान के लोक की बात और है, नीचे के लोकों में भी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, इतना ऐश्वर्य है, इतनी मणियां वहां उनके फनों पर लगी हुई है। मे भी हम लोगों को कोई योगी सिद्धि ले लेनी चाहिए और उसके द्वारा नीचे के लोकों में जाके थोड़े इकट्ठा करके ले आनी चाहिए, इतनी सारी मणियां हैं तो चिंता नहीं होगी उत्सव करने के लिए, मंदिर चलाने के लिए, है ना। थोड़ी बनिया ले आएंगे जाके, और वहाँ सिद्धियाँ हैं, क्योंकि जो मैं दानव है, एक साइन पर कहा है कि वो उनका आचार्य है मैं दानव, और मैं दानव ने वहाँ पर बहुत सारी सिद्धियों को प्रकट किया, उसके पुत्र ने भी, उसका पुत्र है बल जो अतल लोक में रहता है, तो उसने 99 प्रकार की सिद्धियों को प्रकट किया है वहाँ 99। यहाँ पर तो हम लोग पतंजलि योग सूत्र में केवल 8 सिद्धियों को पढ़ते हैं, अष्टांग योग की 8 सिद्धियाँ, अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि, लेकिन वहाँ 99 प्रकार की सिद्धियों को उसने प्रकट किया हुआ। और ऐसे ही तो ऐसे बहुत ऐश्वर्य है वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो कभी बीमार नहीं होते, हमेशा स्वस्थ रहते हैं बहुत, क्यों, उनको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, तो हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और बीमारी नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता। देखिए भौतिक जगत में है लेकिन बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, लेकिन फिर भी जन्म और मृत्यु है, जन्म मृत्यु से परे नहीं है, तो मृत्यु होती है उनकी, और मृत्यु उनको पता कैसे चलता है मृत्यु आ रही, बीमार नहीं होते, समय नहीं जाता, कैसे पता चलता, सुदर्शन चक्र का जब तेज प्रकट होता है वो जान जाते हमारी मृत्यु आ रही। तो ऐसा वर्णन है कि सुदर्शन चक्र के तेज से वो भयभीत रहते हैं, कभी कभी इतने भयभीत होते हैं कि वर्णन है कि उनकी जो पत्नियां हैं वो गर्भ में अगर बालक हो तो सुदर्शन चक्र के इतने तेज प्रभाव से वो बालक कनाश हो जाता है, तो उन लोगों की मृत्यु तो होती ही है सुदर्शन चक्र, तो एक ही भय है उनको सुदर्शन चक्र का, बाकी सुखी रहते हैं, कोई चिंता नहीं है, जितना आनंद लेना है लीजिए। ऐसी नदियां हैं जिनमें जब हवा चलती है और थोड़ा बहुत अग्नि गर्म होती है वो तो सोना बन जाता है, लोग उसके गहने बनाकर पहनते हैं, ये शिव जी के लोक में होता है, शिव जी भी एक लोक में रहते हैं, वितल में शिव जी रहते हैं, तो ऐसा ये वर्णन, तो इतना ऐश्वर्यशाली है ये नीचे के लोग। तो फिर शिवदेव गोस्वामी वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि देखिए लोगों को ऐश्वर्य की बहुत सुविधा है और इसीलिए वो मृत्यु के भय से परे चले जाते हैं, मृत्यु आने वाली है वो लोग केवल भय से परे जाते, मृत्यु से परे नहीं जाते। इसी तरह जो व्यक्ति इस जगत में बहुत ज्यादा भौतिक भोगों में पड़ा रहता है वो भी मृत्यु को भूल जाता है, भूल जाता है कि मृत्यु आने वाली है, लेकिन मृत्यु तो आती ही है, इसीलिए हर व्यक्ति को ये स्मरण रखना चाहिए कि जीवन नश्वर है, चाहे बहुत सारे ऐश्वर्य हो, सुविधा हो, अंततः जीवन नश्वर है, इसीलिए तैयारी मृत्यु की करनी चाहिए। तो फिर वो अतल लोक का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि अतल लोक में मय दानव का पुत्र बल रहता है और ये इसने बहुत योगिक सिद्धियों को प्रकट किया है, 99 प्रकार की सिद्धियों को प्रकट करता बनाया है और 3 प्रकार की स्त्रियों को बनाया है आनंद लेने के लिए, और ये 3 प्रकार की स्त्रियां अलग अलग रूप से आनंद लेती हैं। वर्णन करेगी एक प्रकार की स्त्री अपने ही दल में विवाह करती हैं, दूसरे प्रकार की स्त्री होती है जो किसी भी दल में विवाह कर लेती हैं, तीसरे प्रकार की स्त्री जिसको पुंश्चली कहते हैं वो पति बदलती रहती है। तो इस तरह वहाँ पर वो लोग केवल भोग में, मतलब बहुत नीचे स्तर के भोग में पड़े हुए हैं, ये कोई ऊंचे स्तर का भोग नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति करना जिसको वो लोग जीवन का उद्देश्य मानते हैं, इसीलिए नीचे के लोगों के माने जाते हैं। देखिए नीचे के लोगों में लोग भोग करते हैं, स्वर्ग में लोग भोग करते हैं, केवल पृथ्वी है जहाँ पर लोग भक्ति कर सकते हैं, इसीलिए हमें भाग्यवान मानना चाहिए अपने आप को, अगर हम लोग कहीं नीचे के लोक में होते तो हम भी इसी तरह केवल आनंद में घूम रहे होते, कहीं देवता बन गए होते तो वहाँ पर आनंद ले रहे होते, अप्सराओं के साथ, गंधर्वों के साथ इत्यादि, लेकिन भाग्य है कि हम पृथ्वी पर हैं, ऐश्वर्य भी है, भक्ति की सुविधा भी है, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी अतल लोक का वर्णन करने के बाद वितल लोक का वर्णन करते हैं कि जहाँ शिवजी भवानी के साथ रहते हैं वितल लोक में, और उनके बहुत सारे अनुयायी, शिवजी के अनुयायी ये नीचे लोकों में रहने ही लायक हैं, मतलब भूत प्रेत इत्यादि वो सब वहाँ रहते हैं उनके अनुयायी, तो शिवजी वहाँ रहते हैं भवानी के साथ, और वहाँ पर ये नदी है जिस नदी से स्वर्ण उत्पन्न होता है, और वहाँ के लोग स्वर्ण के गहने पहनते हैं, तो वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, दुकान में जाकर खरीदना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता, सोने का रेट बढ़ता कम नहीं होता, तो वहाँ पर बस नदी से प्रकट हो जाता है और उसको लोग लेकर सोने के गहने बनाकर वहाँ पर पहनते हैं। तो ऐसे ही वितल लोक है, तो अतल लोक वितल लोक। अब सुतल लोक का वर्णन करने लगे तो वो कहते हैं कि सुतल लोक में, जैसे उन्होंने सुतल लोक का वर्णन किया, उन्होंने कहा वहां पर बलि महाराज रहते हैं, और फिर वो कहते हैं परीक्षित को कि देखो ये मत सोचना कि बहुत ऐश्वर्य उनको मिला, राज वामन देव ने सारा कुछ उनका ले लिया था, फिर उनको बड़ा ऐश्वर्य दे दिया सब, तो उनको ऐश्वर्य इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने भगवान को दान दिया था, सब कुछ दान दे दिया था इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य दिया, नहीं, भगवान ने उनको सब कुछ इसलिए दिया क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं बलि महाराज। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति करने का असली फल ऐश्वर्य नहीं है। हाँ, भक्तों के पास ऐश्वर्य होता है, ऐसा नहीं है कि भक्त हमेशा गरीब होते हैं। ध्रुव महाराज को दिया ऐश्वर्य भगवान ने, कितने सारे भक्तों को दिया। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात तात्पर्य में बताते हैं, अगर आप लोग आँख खोलकर सुनेंगे तो अच्छी तरह आपको स्मरण होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जो नव दीक्षित भक्त होते हैं भगवान उनको ऐश्वर्य नहीं देते हैं, अर्थात जो नए हैं अभी भक्ति में, जो भक्ति में दृढ़ नहीं हुए उनको ऐश्वर्य नहीं देते, उनका सब कुछ हर लेते हैं भगवान, उनका सब कुछ हर लेते हैं ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। लेकिन जो भक्ति में बढ़े चढ़े भक्त हैं उनको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो जो नए लोग हैं हमारे जैसे, उनका सब कुछ हर लेते हैं भगवान, ये संभाल नहीं पाएंगे, और सही है, अगर ऐसे नए भक्तों को भगवान बहुत सारा ऐश्वर्य दे दें तो भगवान को भूल जाएंगे, बहुत सरल है। हम लोगों को अचानक बहुत सारा ऐश्वर्य मिल जाए तो कौन भक्ति करेगा भगवान की, अभी तो हम लोग इतने दृढ़ नहीं हुए हैं, इसीलिए भगवान नए भक्तों से सब कुछ हरण कर लेते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ भक्त हैं जैसे श्रील प्रभुपाद, देखिए कितना ऐश्वर्य दिया उनको भगवान ने, परीक्षा ली, घुमा फिरा के अमेरिका एक प्लेन में भी नहीं लेकर गए, शिप में एक महीना तकलीफ में लेकर गए, कहाँ प्लेन का टिकट दिया प्रभुपाद को, दे सकते थे ना, प्लेन तो चलते थे उस समय, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं, कितनी तकलीफ में मांग मांग के, लेकिन जब दिया तो कितना ऐश्वर्य, 108 मंदिर, हजारों शिष्य, पैसे की तो पूछना ही नहीं, कितना कमी ही नहीं। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि हमारे 108 मंदिर, 100 से अधिक मंदिर हैं, और हर मंदिर में 20 नहीं 50 नहीं 50 से भी ज्यादा भक्त रहते हैं, और हर मंदिर का खर्चा चल रहा है। प्रभुपाद कहते हैं, आप अहंकार से नहीं कहते कि देखो मैंने कितना बड़ा कर दिया, भगवान के महानता को बताते हैं कि इतना है, हर मंदिर चल रहा है, हर एक का खर्चा है, भगवान दे रहे हैं, तो ये भगवान करते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी प्रॉपर यही समझाते हैं कि भगवान नए भक्त का सब कुछ हरण कर लेते हैं, लेकिन जो भक्ति में बड़े चढ़े उनको ऐश्वर्य भी देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को दिया, कितना ऐश्वर्य दिया ध्रुव महाराज को उन्होंने। प्रहलाद महाराज के पास ऐश्वर्य कम था, उनको उन्होंने राजा बनाया, प्रहलाद महाराज ने राज्य किया, तो ऐश्वर्य उनको देते हैं भगवान जो भक्ति में आगे बढ़े चढ़े हैं, लेकिन भक्ति में ऐश्वर्य प्राप्त करना ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं हरे कृष्णा करें ताकि हरे हरे नोट आ जाए। आजकल हरे हरे नहीं है, अब तो लाल हो गए हैं, तो हम भक्ति इसलिए नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए कि जब कर रहे हैं और जब करते करते प्रार्थना करें भगवान कितना कमी है थोड़ा भेज दो। ये जब ये भगवान की भक्ति का उद्देश्य नहीं है। भगवान की भक्ति का उद्देश्य उनका प्रेम प्राप्त करना। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सच्ची कृपा ऐश्वर्य देना नहीं है, भगवान की सच्ची कृपा प्रेम देना है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाए वो सच्ची कृपा है। और इसीलिए वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि किस तरह भगवान ये ऐश्वर्य देते हैं। और फिर इस श्लोक को वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान के नाम लेने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, पाप कट जाते हैं। तो फिर भक्ति क्यों करना है पाप कटने के लिए? भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? भक्ति पाप काटने के लिए नहीं की जाती, भक्ति मुक्त होने के लिए भी नहीं की जाती। देखिए भक्ति के कितने महत्वपूर्ण उद्देश्य को इन श्लोकों में प्रकट कर रहे हैं। हालांकि हम लोग सुने तल वितल सुतल परेशान हो रहे थे कितने सारे तल हैं, लेकिन उसी के बीच में सुखदेव गोस्वामी प्रकट करते हैं भक्ति का प्रमुख उद्देश्य। तो भक्ति का उद्देश्य ना तो भौतिक ऐश्वर्य है, ना ही पापों से परे जाना है और ना ही मुक्ति प्राप्त करना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्त को देते भी है भगवान तो भक्त लेता नहीं है मुक्ति, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि जब कोई भक्ति करते हैं तो मुक्ति तो हाथ जोड़कर खड़ी रहती है दरवाजे पर, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, और भक्त कहता थोड़ी देर खड़े रहो बाद में देखेंगे। ये भक्ति है जहां हम भागते नहीं है मुक्ति के पीछे। जितने बड़े बड़े योगी कर्मी ज्ञानी हैं वो मुक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के पीछे भागता है मुक्ति उसके पीछे भागती। तो क्या चीज जरूरी है, भक्ति करना या मुक्ति प्राप्त करना? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भक्ति का उद्देश्य ना तो ऐश्वर्य प्राप्त करना है। अर्थात हम लोग भक्ति नहीं करें ये कहते कि बस मुझे ऐश्वर्य मिल जाए, इस जगत का आनंद मिल जाए। नहीं, वो तो चाहिए ही नहीं। भक्त वो है जो भौतिक ऐश्वर्य को त्यागे, उसके पीछे नहीं भागे, ऐश्वर्य उसके पीछे भागे। प्रभुपाद के पीछे भाग रहा था ऐश्वर्य, जहां भी गए मंदिर बना दिए प्रभुपाद ने, जहां गए वहां अनुयायी हो गए, जहां गए वहां धन आने लगा। आप सोचिए अकेले व्यक्ति थे उस समय प्रभुपाद, 108 मंदिर कैसे चलाते होंगे। हमारे लिए तो एक मंदिर चलाने को ऐसा लग रहा है कि 108 साल निकल गए हैं। प्रभुपाद अकेले 108 मंदिर चलाते थे, सारा कहां कहां से धन आओ। केवल मंदिर नहीं, बीबीटी उन्होंने चालू किया, प्रिंटिंग करते थे। हम लोग तो वो सब नहीं करते, हमारे लिए बीबीटी प्रिंटिंग करती है, वो अलग देख रहे हैं कोई अलग। इस सब प्रभुपाद देखा करते थे अकेले। बुक्स प्रिंटिंग कर रहे हैं, मंदिर चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है, फार्म कम्युनिटीज बना रहे हैं, 1,000 acres जगह खरीद रहे हैं प्रभुपाद। ये कोई साधारण बात नहीं है। कौन सा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इतना कर सकता है बताइए? किसने किया है इतना, इतने सारे ब्रांचेस, इतना सब, और वो भी अकेले। कोई नहीं था उस समय उनको मदद, मतलब भक्त आ रहे थे लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा ऑर्गेनाइज थिंग थी सब। तो बीबीटी कोई और देख रहा है, फार्म कम्युनिटी कोई और देख रहा है, मंदिर कोई और चला रहा है, हमें बस छोटा सा ही चलाना है। नहीं, अकेले सारे कर रहे थे। तो अर्थात क्या है, ऐश्वर्य उनके पीछे भाग रहा है। जहां वो जा रहे थे ऐश्वर्य आ रहा था, मुझे भी थोड़ी सेवा में लगा तो प्रभु ठीक है आ चलो एक और मंदिर बना देते हैं। फिर आगे कहीं जाते थे ऐश्वर्य, तो मेरी कुछ मुझे सेवा में, ठीक है चलो 1,000 acres जमीन खरीद लेते हैं। तो ये प्रभु का, तो ये भक्ति है। तो इसीलिए भक्त भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करता, पापों से परे जाने की भी कामना नहीं करता। ऐसा नहीं सोचता कि मैं भक्ति कर रहा हूं मेरे पाप कब कटेंगे, कब मैं बहुत पापी हूं मेरे पाप कट जाए, पाप कट, कोई चिंता नहीं। और ना ही मुक्ति, तो मुक्ति भी हाथ जोड़कर खड़ी है मुझे स्वीकार कीजिए। भक्त कहते हैं थोड़ी देर को टाइम नहीं है, अभी सेवा कर रहा हूं बाद में आना। मुक्ति खड़ी रहती है बेचारी। तो ये भक्त का, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी श्लोक में हरि नाम का गुणगान कर रहे हैं। और प्रभुपाद इतना सुंदर, इतना बढ़िया तात्पर्य चैतन्य चरितामृत से देते हैं हरि नाम की महिमा का, हरिदास ठाकुर के मुख से हरि नाम की महिमा को प्रकट करा रहे हैं। और कैसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान की ये जो मुक्ति, और ये तो केवल नाम लेने से, तो नामाभास से हो जाती है। नामाभास मतलब प्रभुपाद समझा रहे हैं कि तीन अवस्थाएं हैं हमारे जप करने की। हम लोग जिस स्तर पर जप कर रहे हैं उसको नामापराध स्थिति कहते हैं, क्योंकि हम लोग अपराध करते हुए, दस नाम अपराध करते हुए जप करते हैं। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं तो कोई अपराध नहीं करता, है ना? हम लोग सब करते हैं। दस नाम अपराध की सूची बड़े ध्यान से पढ़िए, पता चलेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। पहला अपराध कौन सा है? वैष्णवों की निंदा करना। कभी ना कभी तो कर देते हैं हम लोग कहीं ना कहीं से, गलती से मन में इधर उधर अपराध हो जाता। दूसरा, देवताओं को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र मानना, वो शायद हम लोग नहीं करते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आ जाता है। बहुत तकलीफ हो रही है, घर में पैसा नहीं है, जरा जाके एस्ट्रोलॉजर को पूछूं कुछ कुछ तो करे क्या, जो करना है ठीक है कर ले, कम से कम दुख दूर हो तो भगवान की भक्ति करूं, तो वो भी हो जाता है कभी कभी। गुरु की अवज्ञा करना, उनको साधारण व्यक्ति समझना, ये तो हम लोग बहुत बार करते हैं, है ना? उनको साधारण व्यक्ति, गुरु कहते ध्यान पूर्वक जप करो, भगवान की सेवा नम्र भाव में करो, सुनते हैं हाँ प्रवचन अच्छा था गुरु महाराज का, लेकिन पालन नहीं। ये गुरु की अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा मतलब केवल ये नहीं कि गुरु ने आपको बुलाकर साक्षात आदेश दिया वो आपने पूरा नहीं किया। गुरु की अवज्ञा मतलब जो गुरु कहते हैं उनके प्रवचनों में इत्यादि, या जो गुरु आपसे चाहते हैं भक्ति के लिए वो आप ना करें, वो गुरु अवज्ञा। सरल, ऐसे कौन से गुरु हैं जो अपने प्रवचन में ये नहीं कहते कि भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लेना चाहिए, नम्र भाव में सेवा करनी चाहिए, ये सब वही चीजें। तो गुरु तो ऐसे, अभी पूरे विस्तार से सारे दस अध्याय दस अपराध चर्चा नहीं करें। तो इसके कारण हमारी जो स्थिति है ये नाम अपराध की है, लेकिन जब इसके परे जाते हैं तो नामाभास होता है, नाम का आभास। अभी सूर्य निकला नहीं है लेकिन अचानक जो अंधकार है वो दूर होने लगता है, तो हमें पता चलता है सूर्य निकलने वाला है। ना सूर्य की किरण दिखाई देती है ना सूर्य दिखाई देता है, लेकिन पता चल जाता है आने वाला, उसको आभास कहते हैं। तो अभी हृदय में प्रेम नहीं आया, शुद्धता नहीं आया, लेकिन पता चलता अपराध बंद हो गए हैं, आ जाएगा, उसको नामाभास कहते हैं, और वो स्थिति मुक्त कर देती है। लेकिन शुद्ध नाम अर्थात जब पूरा सूर्य उदय हो जाए वो हमें कृष्ण प्रेम दिलाता है। तो ये तुलना हरिदास ठाकुर सूर्य के उदाहरण से करते हैं। तो ऐसे वर्णन करने लगे कि ये मत मानो कि बलि महाराज को भगवान ने केवल, उन्होंने थोड़ा बहुत दान दे दिया अपना जो भी कुछ था, इसीलिए बलि महाराज को उन्होंने इतना ऐश्वर्य दिया। नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी भक्ति के द्वारा वे केवल ऐश्वर्य नहीं प्रदान किया है, भगवान उनके द्वारपाल बने हुए हैं। सुतल लोक में जहाँ ये रहते हैं बलि महाराज, भगवान हाथ में गदा लेकर उनकी रक्षा कर रहे हैं द्वार पर। ये प्रेम है भगवान का। तो भगवान ने केवल, जैसे वो कह रहे हैं कि भगवान को कुछ दान दे दो तो भगवान दे देते हैं, वो नहीं है। भक्ति के कारण उनके द्वार पर खड़े हुए हैं हाथ में गदा लेकर रक्षा करने के लिए। और जब रावण आया था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब रावण आया था तो भगवान ने अपने पांव के अंगूठे से ऐसा लात मारा था कि इतनी दूर जाकर गिरा था रावण, वापस कभी नहीं आया। बलि महाराज से युद्ध करने आया था एक समय, बलि महाराज भगवान ने अंदर ही नहीं जाने दिए, भगवान रक्षा कर रहे हैं। बलि महाराज को तो पता भी नहीं चला कि रावण आया है, ये तो भगवान ने ही बाहर से अंगूठे से मारा वो रावण पता नहीं कहां पर। तो ये बलि महाराज के प्रति प्रेम है। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लेकिन बलि महाराज का भी थोड़ा गुणगान सुन लो। बलि महाराज ने क्या कहा जब भगवान ने उन्हें बांध लिया, अब वो सुखदेव गोस्वामी वो वर्णन आगे वर्णन आने वाला है, पूरी पूरी लीला का वर्णन आठवें स्कंद में आएगा, लेकिन वो अभी कहते हैं देखिए ये भक्त है सुखदेव गोस्वामी। जहां एक भक्त की बात आई रोक नहीं पाए अपने आप को, वर्णन तो ग्रहों का कर रहे हैं तो वो रोक नहीं पाए कि कैसे वामन देव के रूप में जब भगवान आए थे तीन पग भूमि मांगी उन्होंने, फिर धोखे से सब ले लिया, तो उस समय बांध दिया उन्होंने, और जब बांध दिया था बंधन में थे बलि महाराज, तब बलि महाराज क्या कहते हैं इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि महाराज कहते हैं कि धिक्कार है इंद्र तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है तुम्हारे दरवाजे पर भगवान खड़े थे, वामन देव प्रकट हुए थे ना, प्रकट तो वहीं हुए थे इंद्र के पास, तो तुम्हारे दरवाजे पर भगवान खड़े थे, तुमने क्या मांगा उनसे? राज्य, मेरा राज्य बचाइए, बहुत ही ऐश्वर्य मांगा। इंद्र की निंदा करते कि इंद्र मूर्ख हो तुम, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, अरे भगवान खड़े हैं उनसे तुमने भक्ति नहीं मांगी, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, बलि महाराज कहे। तो देखिए हम लोग को भी सीखना चाहिए, ये नहीं सोचें कि भगवान बलि महाराज की बात हो गई, ये हमारे लिए भी है कि बलि महाराज हर उस व्यक्ति को धिक्कार रहे हैं जो भगवान के सामने आकर भौतिक ऐश्वर्य मांग रहा है कि थोड़ा मुझे ये दे दो थोड़ा वो दे दो। तो इंद्र को कहते हैं इंद्र धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, बोलते मुझे दया आती है, मुझे बड़ी दया आती है इंद्र के ऊपर, क्या किया इसने, भगवान द्वार पे खड़े थे, कुछ भी मांग सकता था, भक्ति मांग लेता, प्रेम मांग लेता भगवान के प्रति, क्या मांगा, मेरा थोड़ा राज्य बचा हुआ। तो बलि महाराज कहते हैं ये जो ऐश्वर्य है, ये जो मिलता है, ये केवल अगर इंद्र को बहुत ऐश्वर्य मिल भी जाए तो कितने समय तक रहता है? बलि महाराज कहते हैं ज्यादा से ज्यादा एक मनु के समय रह सकता है, क्योंकि जो इंद्र इत्यादि देवता प्रमुख होते हैं वो एक मनु के समय रहते हैं, अर्थात 71 चतुर्युग। देखिए हम लोग तो 100 साल के जीवन में ऐश्वर्य बनाने का प्रयास करें, बलि महाराज कह रहे कितना समय रहेगा एक मनु का समय, मतलब 71 चतुर्युग कितने साल हो गए, एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होते हैं, उसको 71 से मल्टीप्लाई कीजिए, है कोई, खैर छोड़ दीजिए, प्रयास भी मत कीजिए, उतने साल तक का रह सकता है। तो बलि महाराज कहते हैं कितना समय, अगर शाश्वतता की दृष्टि से जीवन भौतिक जगत की दृष्टि से देखा जाए बहुत थोड़ा सा समय, बोले इतने थोड़े समय के ऐश्वर्य के लिए तुमने भगवान से भक्ति नहीं मांगी, धिक्कार है इंद्र। प्रहलाद को देखो वो गुणगान करते हैं, बलि महाराज सदैव प्रहलाद महाराज का स्मरण किया करते थे, तो प्रहलाद को देखिए वो कहते हैं मेरे जो वंशज थे प्रहलाद महाराज उन्होंने प्राप्त किया भगवान को, उनको कोई आसक्ति नहीं थी ऐश्वर्यों से, उनके सामने जब भगवान आए, ये तुलना कर रहे हैं बलि महाराज कि इंद्र तुम्हारे सामने भगवान आए तुमने क्या मांगा, थोड़ा राज्य बचा लो, ऐश्वर्य दे दो, गद्दी बनी रहे मेरे। अरे देखो प्रहलाद के सामने भगवान आए, प्रहलाद ने क्या मांगा, कुछ नहीं मांगा, वो कहते वो तो बोल रहे थे मांगो, भगवान बार बार कह रहे थे मांगो, प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा, और मांगा भी तो क्या मांगा, ठीक है अगर आप कह ही रहे हैं ये जो मेरे पिता हैं इनका उद्धार कर दीजिए, भले आपके प्रति विरोधी थे लेकिन उद्धार कर दीजिए, भगवान ने कहा कुछ और मांगो, ये कोई मांगने की चीज है, तो पहले ही हो गया उद्धार, इनका क्या तुम्हारी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया, कुछ और मांगो, फिर भी नहीं मांग रहे, मेरी इच्छा मैं देना चाहता हूं मांगो, अच्छा ठीक है सारे जीवों का उद्धार कर दीजिए। उस समय भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा कि ठीक है अब आप कह ही रहे हैं, मेरी तो इच्छा नहीं थी लेकिन अब आप कह रहे हैं तो थोड़ा एक बहुत बड़ा राज्य दे दीजिए, थोड़ा ये दे दीजिए, थोड़ा आनंद दे दीजिए, कुछ नहीं। और फिर बलि महाराज कहते हैं कि हमारे जैसे जो आसक्त लोग हैं, मतलब ये देखिए बलि महाराज अपने को कोई बहुत बड़ा नहीं बता रहे हैं, कि इंद्र तुमने मूर्खता की, लेकिन मैं देखो मैंने सब नहीं। इसीलिए जान लीजिए भक्त का भाव होना चाहिए कि बलि महाराज भले इंद्र को कह रहे निंदा कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रति कोई अहंकार नहीं है उन्हें। और फिर वो कहते हैं प्रहलाद महाराज की बात कहकर कि लेकिन हमारे जैसे जो आसक्त लोग हैं वो मोबाइल भी बंद नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि जो आसक्त लोग हैं हमारे जैसे, वे भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज ने किया, लेकिन वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आसक्ति है इन चीजों में, भौतिक चीजों में। तो इसलिए बहुत स्पष्ट कहते हैं बलि महाराज कि अगर भौतिक ऐश्वर्यों में आसक्ति बनी रहेगी तो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो स्पष्ट कहते हैं हमारे जैसे, मतलब अपने आप को आसक्त कह रहे हैं, मैं तो आसक्त व्यक्ति हूं भौतिक ऐश्वर्यों में, मुझे कहां से भगवान प्राप्त होंगे। तो इसको कहने, ये कहने के बाद फिर आगे सुखदेव गोस्वामी अन्य लोगों का वर्णन करते हैं। तो सुतर लोक का वर्णन किया, अभी आगे बलि महाराज का पूरा विस्तार से आठवें स्कंद में कथा आने वाली है, उस समय वो वर्णन करेंगे कि बलि महाराज का क्या गुणगान है। तो फिर वो वर्णन करते हैं, तो ये लोक था सुतल, अतल, वितल, सुतल। तो फिर वो करते हैं कि उसके नीचे है तलातल, तलातल में मय दानव रहता है, अतल में उसका पुत्र रहता है और तलातल में मय दानव स्वयं रहता है। और ये कहते हैं कि ये दैत्यों का, दानवों का आचार्य है, प्रमुख है ये। और वहां पर वो रहता है, शिवजी के द्वारा उसको रक्षण प्रदान किया गया है। शिवजी ने मय दानव की एक बार एक नगरी को पूरे जलाकर खत्म कर दिया था, जिसको त्रिपुर कहते थे। उसने तीन स्तर पर अपनी नगरी बनाई हुई थी, शिवजी ने जला दिया, इसीलिए शिवजी का एक नाम है त्रिपुरारी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने मय दानव को आशीर्वाद भी दिया कि ठीक है, उसकी रक्षा का आशीर्वाद। तो उनसे रक्षित वो रहता है और भ्रम में है कि अगर शिवजी मेरी रक्षा कर रहे हैं तो सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकता। इस भ्रम में वो सुखी है, वो कहते हैं। तो ऐसे वो तलातल में रहता है। फिर उसके नीचे महातल है, महातल में कई सर्प रहते हैं, जिनमें से प्रमुख सर्पों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि कालिया वहाँ रहता है, तक्षक वहाँ रहता है, असुकी इत्यादि वहाँ के प्रमुख सर्प हैं और कई उनके फण हैं। तो ऐसे महातल में वो लोग रहते हैं। और फिर उसके नीचे रसातल और तलातल है, जहाँ पर भी अलग अलग रसातल और पाताल है, जहाँ पर अलग अलग नाग इत्यादि रहते हैं। रसातल में कई प्रकार के दानव रहते हैं, जिनमें से एक का नाम वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी निमत कवच कहते हैं, और इनका वर्णन महाभारत में भी आता है। ये लोग दुर्योधन को अपने साथ ले गए थे नीचे, और वहाँ जाकर दुर्योधन को शक्ति प्रदान की थी, तुम हमारे में से एक हो, लड़ो भगवान के विरुद्ध। तो ये भी वर्णन आता है। तो ऐसे ये लोक हैं, अंतिम लोक पाताल है। और फिर अब कल हम लोग आगे के अध्याय में वर्णन सुनेंगे भगवान अनंत देव का, क्योंकि पाताल से नीचे अब जाएंगे तो फिर अनंत देव का वर्णन आता है कि कैसे अनंत देव वहाँ रहते हैं और क्या कार्य करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? यस, आई कांट हियर यू क्लियरली, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। Yes.
भगवान ने बलि महाराज को वेद प्रदान किया,
सबको सुनना चाहिए।
अरे भगवान ने बलि महाराज को वेद प्रदान कर दिया, लेकिन सुतल लोक में क्यों प्रदान किया?
हाँ, क्योंकि भगवान को सबकी व्यवस्था करनी है। भगवान आए थे इंद्र को स्वर्ग देने के लिए, तो वो तो उन्हें देना ही था जिस उद्देश्य के लिए वो आए थे। तो जब इंद्र को स्वर्ग देंगे तो उतना ही समान ऐश्वर्य बलि महाराज को भी देना है, तो कहाँ देंगे, कहीं तो देना है। तो उन्होंने सुतल लोक दिया। और सुतल लोक क्या है, ये विश्वकर्मा के द्वारा विशेष रूप से भगवान के लिए बनाया गया स्थान था। तो उन्होंने इंद्र को तो केवल स्वर्ग दिया, बलि महाराज को अपना स्थान दे दिया। तो इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि क्यों सुतल दिया, केवल सुतल क्यों दिया, उल्टा बोलना चाहिए कि देखो भगवान ने इंद्र को तो स्वर्ग दिया, बलि महाराज को सुतल दिया, अपना खुद का स्थान दे दिया। तो ये कृपा उन्होंने उनके ऊपर की। पीछे दीजिए माइक। पाप करने वाले कहाँ जाते हैं, ये अभी एक अध्याय बाद बता रहे हैं आपको। कल का अध्याय छोड़कर फिर परसों जो अध्याय होगा उसमें पता चलेगा कि पाप करने वाले इन लोगों में नहीं जाते हैं। ये जो अतल वैसे ये लोग भी हैं जो वो लोग निम्न ही श्रेणी के हैं, लेकिन जिनका वर्णन आप कर रहे हैं जो मनुष्य पाप करते हैं वो इन लोगों में नहीं जाते, अतल वितल सुतल में, इनसे भी नीचे, इनसे नीचे का वर्णन आगे, ये 24वां अध्याय है, 26वें अध्याय में आएंगे नरक लोकों का वर्णन। तो वो लोग वहां जाते हैं और यातनाएं भोगते हैं, ऐश्वर्य नहीं करते। ओके, और कोई प्रश्न? यस। हाँ, क्योंकि वो भी एक प्रकार का स्वर्ग है, भले ये नीचे के लोक हैं लेकिन पृथ्वी से ज्यादा ऐश्वर्य है, पृथ्वी से ज्यादा सुविधा है वहाँ। तो हम लोग इसको नीचे के लोक केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से नीचे हैं, इसलिए बाकी ऐश्वर्य की दृष्टि से पृथ्वी से कम नहीं है, पृथ्वी से कहीं ज्यादा ऐश्वर्य है। जैसे हमने बताया नदी बहती है उसमें से सोना निकल जाता है, कहाँ पृथ्वी पर है बताइए कि कहाँ ऐसा हो। या उन लोगों को बीमारी नहीं होती है, उनको कोई स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है, उनको भूख प्यास नहीं लगती है बहुत ज़्यादा, ये सब वहाँ पर वर्णन है। वो औषधियाँ लेते हैं उससे वो लोग एकदम हृष्ट पुष्ट रहते हैं और समय का भय नहीं है। तो अगर आप पृथ्वी की दृष्टि से तुलना करें तो वो बहुत अच्छे स्थान है, इसीलिए उसको बिलस स्वर्ग कहा गया है। तो शिव जी वहाँ भी रहते हैं और कैलाश में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ वो विशेष कार्य के लिए रहते हैं, भवानी के साथ रहते हैं, उनका वहाँ विशेष कार्य है। ये जो नदी है ये उनके द्वारा प्रकट की जाती है, तो अपने ही अनुयायियों को एक अच्छा स्थान देने के लिए, उनके साथ रहने के लिए वो वहाँ रहते हैं। जैसे कभी कभी भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के नित्य पार्षद यहाँ हम लोगों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो तो भगवान के आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, लेकिन यहाँ आ जाते हैं क्यों, ताकि लोगों का उद्धार हो। इसीलिए शिव जी उन लोगों में रहते हैं ताकि जो उनके अनुयायी हैं उनको संग दे सके। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे विनती है कृपया भागवत क्लास में आए तो मोबाइल बाहर रख कर आया करें या साइलेंट पे रखा करें। अभी ऐसा नहीं है कि किसी का बजे तो और किसी का नहीं बज सकता है, कल को हो सकता है किसी और का बजे। तो आप सबसे विनती है कि आने के पहले थोड़ा सावधानी से बंद करें या उसको साइलेंट पे रखें, राइट। अभी भी कुछ वक्तों का और भी साइलेंट पे नहीं था, उन्होंने अभी तुरंत चेक कर लिया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नताय गौर प्रेमानंदी।